مانتن.
ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए पीएम स्वनिधि के 6 वर्ष वित्तीय समावेशन के माध्यम से रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के महाप्रबंधक राजेश कुमार और पत्रकार सौरभ शुक्ला।
मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में, जिसने शहरों और कस्बों में काम करने वाले रेहड़ी पटरी वाले छोटे विक्रेताओं की मदद करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं राजेश कुमार जी, जो जनरल मैनेजर हैं सिडबी के, उनसे बात करेंगे। राजेश जी, आपका स्वागत है।
धन्यवाद
राजेश जी। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे आम लोगों के समझने के लिए कि ये पीएम स्वनिधि योजना आखिर है क्या और इससे रेहड़ी पटरी वालों को खास तौर पर क्या फायदा मिलता है।
पीएम स्वनिधि योजना बेसिकली एक लोन प्रोवाइड करने के लिए शुरू की गई योजना थी, जिसमें सिलसिलेवार ढंग से 3 चरणों में लोन मिलता था। पहला लोन 10,000 का था, दूसरा 20,000 का और तीसरा 50,000 का। इस लोन के साथ साथ उनको इंटरेस्ट सब्सिडी थी, 7% का इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता था। और डिजिटल ट्रांजेक्शन करने के लिए, डिजिटल ट्रांजेक्शन से मेरा मतलब है QR कोड के थ्रू पेमेंट लेना या डिजिटली पेमेंट करने पे 100 रूपये तक प्रति मंथ का इंसेंटिव था
जी।
अब उसके अलावा 400 रूपये का और इंसेंटिव ऐड हो गया है, जो कि बल्क ट्रांजेक्शन परचेज करने पे उनको मिलता है। इसके अलावा जो सरकार की 8 वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनसे जोड़ने की योजना थी और उनके स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम था।
तो आज जब हम बात कर रहे हैं तो इस योजना को करीब 6 साल पूरे हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है खासतौर पर कोरोना के बाद छोटे दुकानदारों के लिए योजना कितनी मददगार साबित हुई होगी?
ये मददगार कितनी ज्यादा थी, ये आप इसके नंबर से समझ सकते हैं। अभी तक 75 लाख से ज्यादा लोगों को इस स्कीम में लोन मिल चुका है और करीब 17,800 करोड़ के लोन, करीब 1,13,00,000 लोन दिए जा चुके हैं। तो इसका विस्तार पूरे भारत में था, सारे स्टेट यूटीज में स्कीम में, अर्बन एरियाज में इसके लोन दिए गए और लोगों को काफी सहायता हुई, इसलिए कि उनके पास उसमें कार्यशील पूंजी खत्म हो गई थी, बिजनेस को रीस्टार्ट करने के लिए उसमें पैसा चाहिए था
जी।
बट गरीब लोगों को पैसे की जरूरत हमेशा रहती है, कोरोना खत्म होने के बाद भी अभी तक चल रही है और उसका डिमांड है और लोगों में इसका काफी यूटिलिटी दिख रहा है
जी। राजेश, एक अहम चीज जो इस स्कीम में है कि वो एक बिना गारंटी के एक छोटा लोन मिल जाता है, तो ये कितना बड़ा फायदा होता है रेहड़ी पट्टी वाले लोगों के लिए और ऐसे लोग जो साहूकारों के पास जाते थे पहले लोन लेने के लिए या पैसा कर्ज लेने के लिए और उसमें उन्हें काफी लंबा ब्याज भी चुकाना पड़ता था, तो ये खासतौर पर उनके जीवन स्तर में किस तरह का एक सुधार आप देखते हैं?
सुधार 2 रूप में आप देख सकते हैं। एक तो वही अमाउंट अगर वो इनफॉर्मल सेक्टर से मनी लेंडर से लेते थे तो काफी ज्यादा ब्याज देना पड़ता था
जी,
जो उनके प्रॉफिट को कम करता था। दूसरा, चूंकि काफी हाई रेट कॉस्ट पे लोन मिलता था तो वो एक छोटा अमाउंट लेते थे, जितना बेसिक जरूरत होती थी उतनी ही लेते थे क्योंकि काफी ज्यादा उनको इंटरेस्ट देना पड़ता था। स्कीम में रिजनेबली गुड अमाउंट, जिसको कहते हैं कि पहले 10,000 रुपया जो अभी बढ़ के 15,000 रुपया हो गया, फिर 25,000 रुपया और फिर 50,000 रुपये का लोन मिलता है, तो उनको सिर्फ ना बिजनेस चलाने के लिए बल्कि बिजनेस बढ़ाने के लिए सुविधा हो रही है और इसकी वजह से उनका ओवरऑल इनकम इसलिए बढ़ रहा है कि उनके बिजनेस का साइज बढ़ रहा है
जी।
तो दोनों रूप से फायदा हुई और हमने इम्पैक्ट स्टडी कराया, 2 स्टडी कराया था, तो उसमें निकल के आया कि इनका इनकम जो है करीब करीब 20% से एनुअली बढ़ रहा है जिन्होंने इसके अंदर लोन लिया है। तो इसका दोनों वजह से है, कॉस्ट कम होना और बिजनेस का बड़ा करना।
कोई एक उदाहरण जो आपके जहन में ताजा हो रहा हो इस समय बात करते समय कि किसी के जीवन स्तर में आपने सुधार देखा हो, क्या काम करता था वो व्यक्ति?
बहुत लोगों ने बिजनेस को बड़ा किया, पहले थोड़ा सा क्वांटिटी रखते थे। जब भी हम फील्ड में जाते हैं तो वो बताते हैं कि चाहे वो फल वाला हो, सब्जी वाले हो या आर्टिफैक्ट्स वाले हो, उनका दायरा बढ़ गया, उनका स्टॉक का क्वांटिटी बढ़ गया और उनकी कैपेसिटी बढ़ गई। कुछ ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी किया कि पहले आप सिर्फ फल बेच रहे थे, अब उसका आप जूस भी बेच रहे हैं या कट फ्रूट्स भी बेच रहे हैं, सिर्फ आप मछली बेचते थे, अब मछली को जो है सो फ्रीज में रख रहे हैं तो उसको ज्यादा समय तक बेच पा रहे हैं या फिर उसको आप प्रोसेस करके बेच रहे हैं। पहले आप छोटी आय के आपके पास पूंजी थी तो आप छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स खरीदते थे, अब जब ज्यादा पैसा है तो बड़े बड़े महंगे आर्टिफैक्ट्स भी खरीद के आप दुकान में रखते हैं। तो हजारों ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको, आपको बता देंगे लोग कि कैसे उनके बिजनेस को बढ़ावा मिला है इससे।
आप लोगों को कोई चुनौतियां भी सामने आई जब स्कीम को आप लोगों के बीच लेकर के गए, उनका रुझान कैसे था? क्योंकि आज तो नंबर्स बड़े अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन शुरुआती दिनों में क्या माहौल था?
शुरुआती दिनों में डिमांड था, इसलिए कि कोरोना के कारण लोग काफी अफेक्टेड हुए थे, उनको पूंजी चाहिए थी, और सरकारी जो मशीनरी है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे यूएलबीज हो, अर्बन लोकल बॉडी, मतलब जो शहर का जो लोकल निकाय है, उन लोगों में भी रुचि थी। बट एक मुश्किल जो थी, इनको बैंक तक ले जाना, और बैंकों में भी एक थोड़ा सा ये मानसिक रूप से ये होता है कि इतने गरीब लोगों को लोन देना, वापस हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। शुरुआती एक उलझन थी लोगों के दिमाग में, एक दुविधा थी कि ऐसा सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, बट बहुत जल्दी ये साबित हो गया कि ये काफी सक्सेसफुल है, लोग ऋण चुका रहे हैं, तो उसके बाद ये पीछे मुड़ के इस स्कीम ने नहीं देखा।
ये वाकई खासतौर पर बैंकों के लिए भी दिक्कत होती है कि अगर वो किसी को लोन दे रहे हैं तो वापस आएगा नहीं आएगा, ये चिंता बैंकों के लिए बड़ी होती है। तो इस स्कीम में क्या कहीं ऐसा कुछ देखने को मिला है जरा भी कि नहीं लोगों की तरफ से इंतजार हो कि नहीं मेरा पैसा माफ कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ, या वो अपनी क्रेडिट रेटिंग सुधारने के लिए तुरंत ही लोन का भुगतान करने में सबसे आगे बढ़कर अपना काम करते हैं?
मैंने नहीं देखा कभी कि किसी ने इंतजार किया हो कि उसका लोन माफ हो जाए, लेकिन चूंकि गरीब लोग हैं तो उनके जिंदगी में बहुत सारी ऐसी जेन्युइन परेशानियां आती रहती हैं, वो हेल्थ का इश्यूज हो, बिजनेस का इश्यूज हो, आपके इलाके में बाढ़ आ गया, आपके गांव में स्थिति आपदा हो गई, गर्मी है, कुछ ही कारण से आपका बिजनेस, बारिश हो गई बहुत ज्यादा तो आपका बिजनेस अफेक्ट हो गया, तो बहुत सारे कारणों से लोग ऋण को चुका पाने में असमर्थ होते हैं। बट ऐसा मैंने नहीं देखा जहां पर कि उनके पास नियत नहीं हो चुकाने की। और इस स्कीम में इनबिल्ट इंसेंटिव है, आप पहला लोन पे करेंगे तो दूसरा बड़ा लोन मिलेगा, दूसरा लोन प्रीपे करेंगे तो तीसरा और बड़ा लोन मिलेगा। आप तभी लेंगे लोन जब आपको जरूरत है, लेकिन आपको ये पता है कि जब जरूरत है तो वो लोन मिलेगा
जी,
तो इसलिए लोगों की रुचि है लोन को लेने में और रिपे करने में।
जी जाहिर है, तो मतलब कर्ज चुकाएंगे तो अपने कारोबार को बढ़ाने की रुचि लोगों में रहती ही है, और उसका एक इंसेंटिव भी मिलता है कि अगर आपने लिया हुआ कर्ज समय पर चुका दिया तो आपको और ज्यादा कर्ज मिलेगा। डिजिटल पेमेंट इंसेंटिव की भी आपने बात कही थी, वो किस तरह से होता है और पिछले 6 सालों में लोगों ने इसमें किस तरह का रुझान दिखाया?
डिजिटल इंसेंटिव है, अगर आप जैसे ग्राहक से अपने पैसा जो है सो क्यूआर कोड के थ्रू ऑनलाइन लेते हैं तो उसके लिए हम इंसेंटिव देते हैं, या आप जो अपनी पेमेंट करना है, जो आप खरीद करते हैं उसके लिए आप पेमेंट करते हैं, पर्सनल हो या बिजनेस एक्सपेंसेस हो, तो एक तो रिटेल का हम देते हैं जो साल में मैक्सिमम 1200 रुपए तक मिल सकता है, 100 रुपए प्रति मंथ। दूसरा एक अभी शुरू किया गया है जिसमें क्वार्टर में हम 100 रुपए देते हैं, अगर वो स्ट्रीट वेंडर 2000 रुपए से ज्यादा का परचेज करता है और ऑनलाइन पेमेंट करता है, तो इस तरह से आप साल में 1600 रुपए तक डिजिटल इंसेंटिव के रूप में पा सकते हैं, जो आपके ऑलमोस्ट लोन के इंटरेस्ट का कॉस्ट सब्सिडाइज कर देता है।
जी, महिलाओं के लिए इस योजना में कोई खास पहल देखने को मिली?
महिलाओं की भागीदारी इस स्कीम में काफी ज्यादा है, अबाउट 45% जो हमारे बेनिफिशियरी हैं वो महिलाएं ही हैं, तो दो की इस स्कीम में अलग से कोई उनके लिए इंसेंटिव का प्रोविजन नहीं किया गया था, समरूप से ये स्कीम सबको बराबर रूप से सहायता प्रदान कर रहा है, लेकिन चूंकि हमारी सोसाइटी में बिजनेस में महिलाएं हैं और स्ट्रीट वेंडिंग में खास करके उनका योगदान दिखता है, तो उनकी भागीदारी वो हमारी स्कीम में भी दिखती है।
एक अहम सवाल ये भी उठता है कि जब हम अपने आसपास कारोबार में सुधार देखते हैं तो उससे उन लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ता है, पूरी तरह से एक तरह से अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसमें आप इस तरह की योजनाओं का क्या फायदा होता देखते हैं?
अर्थव्यवस्था को फायदा ये है कि जैसे 17,800 करोड़ ये फॉर्मल लोन्स दिए गए, ये पैसे कभी इनफॉर्मल सेक्टर से लिए जाते, अब ये फॉर्मल सेक्टर से हैं, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड बन रहा है, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री बन रही है, और आगे बाहर से लोन लेने में सुविधा होगी। इनफैक्ट हमारे स्कीम में जो स्टडी है उसके हिसाब से 30% से ज्यादा लोगों ने अभी ही स्कीम से बाहर बैंकों से लोन लिया है, फॉर्मल सेक्टर से लोन लिया है, ये फायदा है। दूसरा जो इम्पैक्ट है, जब आपका इनकम लेवल इम्प्रूव होता है तो आपकी सबसे पहली इच्छा होती है कि अपने फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड में जहां जो सबसे महत्वपूर्ण है या सबसे जरूरी आपको तो है उसकी बेसिक सुविधा की उन्नति कर सके, सुधार कर सके, वो आपके घर का हो, बच्चों की पढ़ाई हो या कोई हेल्थ का इश्यू हो, इस घर के लिए अलग अलग चीजें क्रिटिकल होंगी, लेकिन जहां जो क्रिटिकल है वहां वो उस पर एक्सपेंड करते हैं, अपने को सुधारने की कोशिश करते हैं, और ये भी हमारे इम्पैक्ट रिपोर्ट में निकल के आया है कि आधे से ज्यादा लोगों के जीवन स्तर में कहीं न कहीं ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है।
आपने इम्पैक्ट रिपोर्ट का जिक्र किया तो उसमें क्या क्या पैमाने रखे थे आप लोगों ने इस रिपोर्ट को बनाने के लिए?
एक तो हम देखना चाहते थे कि इनकम में क्या इम्प्रूवमेंट है, दूसरा ये देखना चाहते थे कि उस इम्पैक्ट उनके लिविंग्स पे आता है कि नहीं, तो 4 बेसिक पैरामीटर्स थे, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, उनके घर का रहना ठिकाना था, किया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खुद का और परिवार का हेल्थ और खाने पीने का एक न्यूट्रिशन जो एक बेसिक आप कहते हैं अच्छा भोजन रिलेटिवली वो मिल रहा है कि नहीं, कि इन चारों पैरामीटर पे स्टडी किया गया था।
तो क्या परिणाम इसके निकल के आए, क्या लोगों के स्तर में एक अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला या एक नोशनल इंक्रीज जिसे कहते हैं कि एक मामूली फर्क नजर आया?
उस ढंग से उसको क्लासिफाई नहीं किया गया था उस रिपोर्ट में कि कितना आमूलचूल है, ये आमूलचूल तुरंत हो भी नहीं सकता
जी,
लेकिन हर एक कदम जो कि सही दिशा में बढ़ता है वो इम्पोर्टेंट है, उस तबके के लिए खास करके काफी मायने रखता।
इस योजना का विस्तार भी किया गया है, आपको क्या लगता है किस तरह से और ज्यादा फायदेमंद होगा ये लोगों के लिए और नए लोग भी स्कीम में शामिल होंगे?
अभी तक ये सिर्फ शहरी लोगों के लिए था जो स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं, अब हम इसको सेंसस टाउन में एंड पेरी अर्बन एरियाज में एक्सपेंड कर रहे हैं, तो एक तो वो फायदा हो रहा है और दूसरा स्कीम में अब क्रेडिट कार्ड को जोड़ा गया है, दूसरा फायदा है लोगों के लिए जो एग्जिस्टिंग बोरोअर्स हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं उनके लिए है, और तीसरा हम उनके स्किल में ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, उनको एक बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए उस पर भी हम ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग कराना, उनका हैंड होल्डिंग कराना, उसके लिए भी सरकार कोशिश कर रही है।
सर आपसे एक अहम सवाल ये जानना चाहेंगे कि जो छोटे लोन लेने वाले थे उनमें से कितने लोग बड़े लोन की तरफ बढ़े हैं, ऐसा कोई आंकड़ा अगर आप हमारे साथ साझा कर सकें?
जैसे हमारा जो स्कीम है जो छोटे लोन है जिसको हम फर्स्ट लोन कहते हैं, तो उसमें करीब अभी आज की तारीख में 75-75 लाख लोगों ने लोन ले रखा है।
बिल्कुल,
उसमें से करीब करीब 47 लाख से थोड़े कम लोगों ने रिपे कर दिया पूरी तरह से, या तो जो जिन्होंने फर्स्ट लोन रिपे कर दिया है वो सेकंड लोन के लिए एलिजिबल हैं, उनमें से करीब 29 लाख लोगों ने सेकंड लोन लिया है और जो 13.5 लाख लोगों ने लोन रिपे कर दिया है उसमें से करीब 8 लाख लोगों ने थर्ड लोन लिया है। एक तरह से माना जाए कि काफी ज्यादा जो रिपे कर चुके हैं उनमें से मोर देन 60-70% लोग जो है सो नेक्स्ट लोन लेते हैं।
पिछले हम बात करते हैं स्कीम के बेनिफिशरीज से भी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। विष्णु शंकर भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। विष्णु जी, सारनाथ के रहने वाले हैं आप, और क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में इस योजना का लाभ लेने के बाद? बोलिए राजेश जी।
सर हम लोग तो रेडी वाले हैं, सारनाथ म्यूजियम पे खेलिया पे दुकान लगाता हूँ मैं सर
जी,
और जो मेरा कार्ड है काफी पुराने समय से था जी, कोरोना काल जब आया तो हम लोग लगातार 2 साल के लगभग बंद किए हुए थे, दुकान फिर से शुरू की तो हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी सर, तो उसी समय सर पीएम सुनिधि जो आई ये सर अच्छा होगी, पहली बार तो बैंक हम लोग को सम्मान मिलने लगा, फिर उसके बाद जो हम लोग उसमें रजिस्टर कराकर अपना 10,000 का लोन लिए, जब हम लोग उसकी एक्टिविटी करने लगे तो हम लोग को उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होने लगा, पहली बार तो उसमें मंथली देना पड़ने लगा, फिर उसके बाद हम लोग जब 10,000, 20,000, 50,000 का लिए तो बैंक ऑटोमेटिक आज हमारी सर 4 लाख की लोन की हुई है, उसमें ओडी अकाउंट होती है सर, तो उससे सर हमको बहुत ही सहायता मिला और उसके साथ साथ पीएम सुनिधि साथ साथ हमारे फैमिली मेंबरों को भी सर जोड़ा गया है।
बिल्कुल, तो विष्णु जी बहुत धन्यवाद अपने विचार साझा करने के लिए और उम्मीद करते हैं कि आपका कारोबार इसी तरह से आगे भी बढ़ता रहे। तो राजेश जी अभी आपने विष्णु जी को सुना, वो अपनी बात बता रहे थे कि किस तरह से जो है उन्हें इस योजना का फायदा मिला और किस तरह से उन्होंने अपने कारोबार को आगे बढ़ाया। तो और भी जो लोग इस तरह की योजनाओं का फायदा उठाना चाहते हैं या उनके मन में कोई डर है, कोई शंका है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
उनको मैं कहूंगा कि आप अपने शहर के यूएलबी बॉडी होता है आप उनसे संपर्क, और अगर खुद से कर सकते हैं तो हमारे पीएम स्वनिधि के वेबसाइट पे जाकर के या मोबाइल ऐप से डायरेक्टली आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास स्ट्रीट वेंडिंग का सर्टिफिकेट या कोई डॉक्यूमेंट है तो, और नहीं है तो वेंडिंग के लिए पहले अप्लाई करें, और स्ट्रीट वेंडिंग और लोन अप्लीकेशन अब कम्बाइंड रूप से एक साथ होता है, तो आप जब अप्लाई करेंगे तो पहले आप यूएलबी आपका स्ट्रीट वेंडिंग का कंफर्मेशन करेगा जिसको हम LOR कहते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, और जब आपका LOR यूएलबी अप्रूव कर देगा तो फिर आपका एप्लीकेशन बैंक को चला जाएगा लोन के लिए।
तो राजेश जी इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद आपका।
अभी आप सुन रहे थे पीएम स्वनिधि के 6 वर्ष वित्तीय समावेशन के माध्यम से रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के महाप्रबंधक राजेश कुमार और पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
मंथन।